सर्वप्रथम भागवतम का पाठ करते हैं, फिर और चर्चा है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। कुंती महारानी की, कुंती महारानी भगवान के समक्ष उपस्थित है। हम लोग भी प्रार्थना करते हैं, राधा पंडरीनाथ विट्ठल रुक्मिणी जगन्नाथ स्वामी। मंदिर में जाते हैं हम लोग, प्रार्थना करते हैं, विग्रह को प्रार्थना करते हैं, विग्रह के चरणों में प्रार्थना करते हैं। तो यह कुंती महारानी भगवान प्रत्यक्ष, भगवान एक परोक्ष में होते हैं। भगवान परोक्ष मतलब और कहीं पर है, भगवान कहीं ना कहीं है लेकिन समक्ष नहीं है या प्रत्यक्ष आँखों के सामने नहीं है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनसे विग्रह सामने है तो उनको भी प्रत्यक्ष कह सकते हैं, भगवान सामने हैं। और नामदेव के सामने थे भगवान और उनको भोजन खिलाए, या रघुनंदन के सामने भी थे, उन्होंने भोजन खिलाया, फिर एक लड्डू भी खिलाया। तो विग्रह सामने होना भी प्रत्यक्ष ही है, उनका दर्शन। तो विग्रह भी नहीं है, प्रत्यक्ष भी नहीं है। जैसे कुंती के समक्ष प्रत्यक्ष भगवान थे, तो भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। कुंती महारानी भगवान की बुआ अत्ति परलाजी बहिन। तो भगवान जब आते हस्तिनापुर में तो उनका चरण छूते और कुंती महारानी उनको आशीर्वाद भी देती, आयुष्मान भव, बलवान भव, यशस्वी भव। लेकिन आज कुछ दूसरे मूड में है कुंती महारानी। और नमस्ते पुरुषम त्वाम अद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। ये क्या कह रही हो? कृष्ण ने कहा, ये क्या कह रही हो? पहली बार ऐसे तो मैंने कभी नहीं सुना था। मैं ईश्वर हूँ, मैं प्रकृति ही परम, सर्वभूतों के अंतर बहिर अवस्थितम। और नमस्कार भी, जो कुंती महारानी की प्रार्थना है, प्रार्थना की शुरुआत नमस्से से होती है और प्रार्थना का अंत भी नमस्से से होता है। समथिंग टू टेक नोट। नमस्कार से भगवान नमस्ते, योगेश्वर अखिल गुरु हो भगवान नमस्ते। तो शुरुआत में नमस्कार और प्रार्थना के अंत में पुनः नमस्कार करती है। और अरे वैसे प्रार्थना बारंबार नमस्कार करती है कुंती महारानी। स्त्री है, कथम पश्येम हि स्त्रियः, तो भोली भाली स्त्रिया नमस्कार जैसे करती रहती है। तो वह इस प्रार्थना में बारंबार नमः पंकजनाभाय पंकजमालिने नमः 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 नमस्कार। मन मनाभो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो यह कुंती महारानी पुनः पुनः भगवान को नमस्कार करती है। प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद्भागवत के अंत में भी 18,000 श्लोक जो है उसमें भी अंतिम बात जो है प्रणाम की है। एक तो नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम कहा है, ये आखिरी श्लोक भागवत का आखिरी अंतिम स्कंद अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक में हरि नाम का महिमा गाया है। नाम संकीर्तनम यश यश मतलब कृष्णस्य, इनका नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम, ऐसे भगवान को दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम। कोई प्रणाम करता है भगवान को तो वो प्रणाम ही क्या करेगा, उसके दुख का विनाश करेगा। तो ऐसे हरि परम हरि, तो कुंती महारानी ने अपनी प्रार्थना में पुनः पुनः भगवान को नमस्कार किया है। कौन सा उच्च वन, द लास्ट वन, द लास्ट वर्स ऑफ द भागवतम, वेरी लास्ट, देन देयर इज नो मोर। या यस्टरडे इज अ 12th कैंटो चैप्टर 13th टेक्स्ट नंबर 23 इट्स इम्पोर्टेंट। या आई थिंक कैन यूज दैट वर्स टू से हैव हरि भागवतम, भागवतम का सार हरि नाम कहा है, और फिर प्रणाम का भी फल, कोई प्रणाम करता है भगवान को तो फल क्या है, दुख शमनस्तम, उसका दुख का दमन होगा। वाह, कुंती महारानी ने अभी अभी वैसे और भी कई चमत्कार देखेंगी, देखे ही होंगे। कोई चमत्कार कोई दिखाता है तो फिर क्या होता है, वहाँ नमस्कार होता है, चमत्कार को नमस्कार। तो जो चमत्कार देखी अश्वत्थामा ने वंस अगेन ब्रह्मास्त्र फेंका, और इस समय उसका टारगेट था, उसने लक्ष्य बनाया परीक्षित जो उत्तरा के गर्भ में है, और पांच पांडव भी, पांच पांडवों का और उनका वंशज, बस एक वंशज बचा है। द्रौपदी के पांच पुत्रों को भी अश्वत्थामा ने पहले ही वध किया था जब वे सोए थे शिविर में, कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय जो शिविर शिविरों में रहते, तो बच्चों, उन बच्चों की हत्या, ये हत्यारा पहले ही कर चुका था, और अब सोच रहा था अब कौन बचा है, पांडव बचे हैं और वो परीक्षित बचा है, उस समय नाम परीक्षित नहीं था। तो वो इसने जब अपना ब्रह्मास्त्र फेंका तो उत्तरा पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते, उत्तरा भागी दौड़ी आई कृष्ण की ओर, रक्षा करो रक्षा करो। तो अब हुआ क्या, तो उसने कहा कि मेरी ओर आ रहा एक जलता हुआ बाण, उसको पता नहीं था बाण था, ब्रह्मास्त्र था, तो उसने कहा बाण आ रहा है मेरी ओर, तो अगर आप चाहते हो तो मुझे मार दो, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। तो इतने में पांचों पांडवों ने भी देखा कि उनकी ओर भी ये अस्त्र आ रहा है, ब्रह्मास्त्र बड़ा विशाल आकार धारण करता है, और जैसे उसके प्रलय के समय अग्नि जलाती है सारे ब्रह्मांड को, वैसे ये ब्रह्मास्त्र भी जलाता रहता है जो भी सामने आता है। तो पांचों पांडवों ने अपने अपने यह हथियार, भीम ने गधा उठाई तो अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष, वे सोच रहे थे शायद वे रक्षा कर पाएंगे खुद की, लेकिन कृष्ण जानते थे कि उनके बस का रोग नहीं है। किसी के बस का रोग नहीं होना, समझते ना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, अंग्रेजी में वही कहावत है, इट इज़ नॉट हिज कप ऑफ टी, मतलब वही है, उसके बस का रोग, नॉट अ कप ऑफ टी। तो वे सक्षम नहीं थे अपनी रक्षा के लिए, तो भगवान ने अपना सुदर्शन, सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र का, उसको ठंडा किए, परास्त किए, न्यूट्रलाइज्ड, और फिर परीक्षित महाराज के रक्षा के लिए भगवान ने गर्भ में प्रवेश किया। एक कृष्ण बैठे हैं रथ में जब हस्तिनापुर जा रहे हैं, महाभारत का युद्ध हुआ, हस्तिनापुर में रहे, बहुत कुछ महीने रहे, वैसे 5 महीने भगवान द्वारिका छोड़ के 5 महीने बीत चुके थे। तो वह 5 महीनों के उपरांत जब वे लौट रहे थे, रथ में बैठे हैं, तो एक रूप तो रथ में बैठा है और दूसरे रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में गदा है, अंगूठे के आकार के, अंगूठे के आकार के, और उनके हाथ में अंगूठे के आकार का रूप, और फिर के हाथ कितने होंगे, और फिर उस हाथ में गदा, गदा का आकार क्या होगा, और भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो रक्षा कर भी लिए तो वह तो एक ही समय गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में भगवान भी थे और परीक्षित भी थे। तो सहोदर हो गए, सह उदर, जब दो बालक एक साथ होते हैं किसी माँ के गर्भ में, उदर में, तो उनको सहोदर कहते हैं। जैसे हमारे पंकजांगरी और जननिवास प्रभु सहोदर कहलाते हैं। तो वह परीक्षित महाराज के साथ, मतलब वे भी उत्तरा का एक अपत्य के रूप में, गर्भ में जो है वो पुत्र होता है या पुत्री या अपत्य, तो दो अपत्य साथ में गर्भ में, एक तो अपना पुत्र ही और दूसरे भगवान भी गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में। तो ये चमत्कार, ये विलक्षण पराक्रम भगवान का जब कुंती महारानी देखी है तो समझ रही है कि ये तो हमारे रिश्तेदार जरूर बने हैं, लेकिन ये और है, और कुछ है, और ही है कोई। तो वे कौन है, नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आदि पुरुष हो आप और ईश्वरम, ईश्वर हो, प्रकृति के परे हो, माया जवनिका छन्नम, आप माया के पर्दे से अपने को ढक तो लेते हो। क्या कहते भगवान गीता में, ना हम प्रकाश सर्वशः योग माया समावृतः, ढक लेता हूँ। ऐसा हुआ, भगवान ढक लेते हैं। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, नटो नाट्य धरो यथा। तो हुआ, साधारण मनुष्य आपको पहचान नहीं सकते, दे फेल टू रिकग्नाइज यू। जैसे नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नाटक में कोई नट कोई भूमिका निभाता है, तो कोई नई भूमिका जब निभाता है तो जब उसको स्क्रीन पर देखते हैं तो अगर वो अच्छा सच्चा कलाकार होगा तो उसको बताना मुश्किल होता, कौन सा कलाकार है, ये शम्मी कपूर है कि राज कपूर है कि देवानंद है कि इट एक आधा घंटा लगता है, घंटे के बाद फिर पता चला आई नो कौन है ये कलाकार। और फिर हर सिनेमा में एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल करता है एक ही व्यक्ति सेम देवानंद, लेकिन कभी इडियट बन जाता है, तभी क्या बनता है, तो कभी क्या बनता है एक ही व्यक्ति। तो कुंती महारानी करती, आप बड़े वैसे ही हो, नटो नाट्य धरो यथा, आप तो एक ही हो लेकिन आप अनेक बन जाते हो, आप क्या बनते हो, आप कभी नरसिंह बन जाते हो, तो नरसिंह और कच्छप कोई कह सकता है दिस इज द सेम पर्सन, इतना भेद है दोनों में। तो वह अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, तो मूढ़ लोग साधारण लोग क्या समझेंगे आपको, आप तो बहुरूपी होते, बहुरूपी एक ही व्यक्ति कई सारे रूप धारण करता है। तो वह तथा परमहंसानाम मुनिनाम अमलात्मनाम, मुनिनाम अमलात्मनाम। तो कहते कि बस ये इस प्रकार के लोग तो आपको जान सकते हैं, कथम कश पश्य मही स्त्रिय, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो अबला हूँ, लेस इंटेलिजेंट वगैरह भी कहा जाता है स्त्रियों को, तो वैसी हम, मैं भी एक स्त्री, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ आपको। वैसे भी आप अलक्षम हो या न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, और वैसे भी माया जवनिका छन्नम, आप ढक भी लेते हो स्वयं को, और अधोक्षज भी हो। हाँ, कितना कठिन है अधोक्षज, मतलब अक्ष, मतलब इंद्रियों की जो क्षमता है कुछ देखने सुनने की, तो ये अधोक्षज, मतलब हमारी जो इंद्रिया है थोड़ी क्षमता कुछ अधूरी रह जाती है, सक्षम नहीं है, शॉर्ट फॉल, कुछ कम है। अधोक्षज मतलब इंद्रियों की क्षमता के परे, अधोक्षज। तो ये सब कहा तो फिर हम कैसी जान सकती है। वैसे जान तो रही है, कृष्ण को समझ रही है, अगर वो समझी नहीं होती, उसकी प्रार्थना ज्ञान और भक्ति से पूर्ण नहीं होती, तो उस प्रार्थना का समावेश या उल्लेख भागवत में नहीं होता। श्रील व्यासदेव इस प्रार्थना को इंक्लूड किए हैं भागवत में, तो वो समझ रही है, उसके साक्षात्कार सही है, तभी तो ये भागवत का अंग बन गई प्रार्थना। और पहली प्रार्थना श्रीमद् भागवत में कई सारी प्रार्थना आएगी, प्रार्थना के बाद प्रार्थना के बाद प्रार्थना, लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल प्रार्थना भागवत में जो है कुंती महारानी की प्रार्थना है, एक स्त्री, भक्त स्त्री द्वारा की हुई प्रार्थना। तो ये इनका, इनकी नम्रता है, इनका विनय है, कह रहे हम कैसी समझ सकती है, समझ तो रही है। उसने जब कहा कि ईश्वरम प्रकृति ही परम, बस हो गया, मतलब समझ रही है भगवान तो ऐसे प्रकृति के परे हैं भगवान। तो उनके भाई ने वसुदेव, उन्होंने जब प्रार्थना की कृष्ण जन्मे और प्रार्थना की, तो उन्होंने भी कहा है प्रकृति ही परम, भाई और बहन दोनों का एक ही साक्षात्कार है। आप देख सकते हो वहाँ वे भी, वसुदेव भी कहे थे आप प्रकृति से परे हो, वो हो गए भाई। उनकी बहन अभी यहाँ कह रही है कि आप प्रकृति से परे हो, वहाँ भी कृष्ण समक्ष थे, वहाँ तो अभी अभी जन्मे थे कृष्ण, कुछ ही मिनटों पहले जन्म हुआ, तो वहाँ पर भी प्रकृति से परे थे, और अब बड़े हुए भगवान, शादीशुदे भी हो गए, तो गृहस्थ हो गए, तो भगवान अब प्राकृति नहीं हो गए, वो प्रकृति से परे थे, जब बालक थे तो प्रकृति से परे थे, और अब युवा थे तो प्रकृति से परे, और अभी गृहस्थ हुए तो प्रकृति से परे। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, ये काफ़ी प्रसिद्ध प्रार्थना है, सर्वत्र इस प्रार्थना का गान, उच्चारण, गायन होते रहता है। तो लेकिन कई बार सभी को पता नहीं होता किसकी रचना है ये, तो ये कुंती महारानी की रचना अब समझ में आ ही रहा होगा। कृष्णाय वासुदेवाय कहने वाली कौन है? कुंती महारानी। और क्या कह रही है? कृष्णाय वासुदेवाय, आप मेरे भाई के पुत्र हो, मेरे भाई वसुदेव है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, तो इसीलिए आप वासुदेव हो। तो जब भाई का स्मरण किया कृष्ण से संबंधित संबंध में, कृष्णाय वासुदेवाय, तो वसुदेव पत्नी का भी स्मरण, देवकी नंदनाय च, और फिर कुंती महारानी ये भी जानती है नंद महाराज का रोल भगवान के जीवन में, कृष्ण के लाइफ में नंद महाराज का की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही, तो
नंद गोप कुमाराय, नंद गोप, नंद कैसे, नंद जो गोप है, नंद महाराज जो गोप है, गोप गो गाय प पालक, तो नंद महाराज जो गायों के पालक है, तो उनके उनके पुत्र कुमाराय, नंद गोप कुमाराय, और फिर गायों का भी स्मरण कर रही है इसलिए गोविंदाय कही है, तो नंद फिर वसुदेव देवकी वृंदावन की गाय उन सब का स्मरण करती हुई, स्मरण तो हो रहा है कृष्ण का, लेकिन कृष्ण का स्मरण भक्त के संबंध में जो होता है तो भगवान और प्रसन्न होते हैं, जय सच्चिदानंदन कहेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं, जय सच्चिदानंदन, मेरे माँ का गौरव हो रहा है, मेरी माँ की जय हो, मेरी मम्मी की जय हो, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, तो नमो नमः कहा है, गोविंदाय नमो नमः, नमः नमः नमो नमः, पुनः पुनः नमस्कार, फिर नमः पंकज नाभाय चल रहा है, तो भगवान की नाभि को नमस्कार, और भगवान ने पहनी हुई माला को नमस्कार, भगवान ने पहनी हुई माला को भी नमस्कार, तदीयानाम समर्चनम, तो भगवान के संबंधी जो तदीय है, तदीय मदीय तदीय, उनके उनके संबंध में तो उनकी माला भी फिर या उनके चरण की रज भी, कौन थे वो, उन्होंने कहा कि हम नमस्कार करती है भगवान के चरणों के रज को हमारी नमस्कार, किसने कहा होगा, कालिया की जो पत्नियाँ नाग पत्नियाँ कहते हम शरण लेती है आपके चरणों के, धूली की शरण लेती है हम, इज देयर प्रेयर, वो भी श्लोक का दूसरा एक है, उसी में पंकज मालिने पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंग्रये, तो सारे पंकज पंकज, पंक मतलब कीचड़ होता है, पंक मतलब मड, पंकज सो कीचड़ से जो जन्म लेता है कमल का फूल, तो इसलिए पंकज कहा, तो कई सारे जो कमल के कई सारे नाम हैं, अरविंद इत्यादि इत्यादि, तो सेवन पार्ट्स ऑफ कृष्णस बॉडी आर लोटस लाइक, शुड टेक नोट ऑफ दैट, श्लोक मिलता है 32, 32 अलग अलग लक्षण बताए हैं महापुरुष के लक्षण, तो उसमें 7 भगवान के अंग कमल सदृश कमल जैसे है, फिर 7 पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर पिंकिश, उसमें लालिमा है, न्यग्रोध ऐसा कुछ है, कुछ टेक्निकल टर्म है न्यग्रोध, फिर 3 पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर शॉर्ट, भगवान के 3 पार्ट अवयव शॉर्ट मतलब क्या है, लघु 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 शॉर्ट लघु गुरु, और भी दूसरा शब्द भी हो सकता है लघु, भगवान का गर्दन शॉर्ट है लघु, भगवान के थाइज जांघे जिसको कहते जांघे शॉर्ट है, और भगवान की जेनिटल्स आल्सो शॉर्ट, 3 पार्ट्स याद रहेगा, उनकी गर्दन उनकी जांघे और उनके क्या शिश्न शॉर्ट है, और 3 पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी आर डीप, 3 अवयवों में गहराई है, भगवान की नाभि गहरी है, डीप नेवल, भगवान का वॉइस डीप है, उनका जो मेघ गंभीर या वाचा गंभीर्य है, डेप्थ है, जब कोई आध्यात्मिक सिनेमा है तो जो भगवान का आवाज़ झट से अन्य लोगों के आवाज़ से अलग होता है, सर उसमें डेप्थ है और दूर तक पहुंचने वाला भी, और तीसरा है भगवान का इंटेलिजेंस भी डीप है, भगवान की बुद्धि बड़ी। किसी वेस्टर्न फिलासफर ने ये भगवद गीता एज इट इज पर अपना कमेंट किया था, उन्होंने लिखा कि ये भगवद गीता का स्पीकर सम ओल्ड इंटेलिजेंस, ताकि किसी ओल्ड इंटेलिजेंट बीइंग का ये वचन है या वाचा है, ऐसे विदेश के विद्वान ने कहा। तो बुद्धि भगवान का वाचा ध्वनि और उनकी यह नाभि गहरी है। तो 7 और 7 14 और 6 हो गए, मुझे सारे तो याद नहीं है। सम पार्ट्स आर रेज्ड, उभरे हुए हैं, जैसे भगवान का, भगवान की नासिका है, रेज्ड नोज, जैसे तोते का चोंच होता है। Forehead is also raised. And what? Chest? Broad bhi hoti hai, broad chest hai. Broad chest and thin waist. This is striyon ki waist. Patli kamar ke liye striya prasiddh hai to Bhagwan ka. And large hips. Bhagwan ke bhi waisi hai. Large hips. Thin waist. Broad chest. Raised nose. So anyway, I think aur bhi kuch items hai. Long arms. Ajano lambita bhujo. That's right. Lambi bhujaye hai Bhagwan ki. Yeah, also fine. Bhagwan ki twacha hai. Fine. And the hair on his body. Bhagwan ke jo baal hai. Rom kahenge usko, baalon ko. वो भी मुलायम है या फाइन है, सब फाइन, फाइन का उपयोग हुआ है, फाइन। तो इसका रेफरेंस मिलेगा, तो उसका श्लोक ही है, उसमें कहा है ये 32 लक्षण है, तो उसमें से कुछ लक्षण यह पंकज नाभाय, डीप भी है न और गहरी भी है, और पद्म ऐसी है ना भी। तो ये सारा तो हम लोग नहीं पढ़ने वाले थे, प्रार्थना। पूर्वपदा संतु न शाश्वत, अब ये प्रसिद्ध प्रार्थना है कुंती महारानी की, तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्सात् अपुनर्भव दर्शनम। समझते इसका अर्थ, क्या कह रही है, क्या कह रहे कुंती महारानी, क्या कहती है श्लोक में? बार बार संकट आने दो, विपदा संत ते शाश्वत। फिर आगे अपुनर्भव, अपुनः नहीं, पुनः नहीं होगा दर्शन भाव का, मतलब संसार का। अपुनर्भव भाव, भाव सागर दर्शन। या विपदा संतु थे, अभी अभी का उदाहरण है उनके समक्ष, अभी अभी ब्रह्मास्त्र फेंका था उस बदमाश ने, तो फिर हमारी ये दौड़ाई, उतरा दौड़ी आपकी ओर, पांडव कहने लगे पाई माम, रक्षा करो रक्षा करो। तो ऐसा ही होता, जब जब संकट है तो हम पुलिस को नहीं बुलाते, हमें और कुछ उपाय नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाते, हम तो आपकी ओर आते हैं। वो तो दर्शन हम यथात, जिसके कारण आपका दर्शन होता है, आपका स्मरण, आपका दर्शन। तो फिर पुनर्भव दर्शनम, तो ये नहीं कि उसके जीवन में कुछ शॉर्टेज था संकट का, कितने सारे संकट, लेकिन और ठीक है, आने दो। फिर आगे का भी प्रसिद्ध श्लोक है या एक पार्ट दो। जन्माश्वर्य श्रुत श्रीभीर, तो चार बातें हमको, गर्व, मद, गर्वाचे घर नेहमी खाली, तो गर्व करते हैं या मद, काम क्रोध लोभ मद, मद जो है मद चौथा शत्रु उस क्रम में, तो मद काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, तो मद जो है, तो ये मदह किससे उत्पन्न होता है? मद चार कारण वो बता रही है, जन्म, एक जन्म, दूसरा ऐश्वर्य, तीसरा शिक्षा श्रुत और श्री, चौथा सौंदर्य है। तो इस संसार में लोगों को, मैं इस घर आने का हूँ, जन्म इस घर आने का हूँ, और इवन हो सकता है आई एम वेस्टर्न, हर एक को मैं इस देश का हूँ, मैं इस घर आने का हूँ, इसका तो घर आने की बात है, तो मैं पाटिल घराने का हूँ, पाटिल घराने का, ये घराना खूब चलता रहता है। कई जात पात, और इस जाति का हूँ, जाति क्षत्रिय हूँ मैं, जाट हूँ मैं, ब्राह्मण हूँ मैं, इतने इस प्रकार संसार का विभाजन हुए है। जन्म ऐश्वर्य, फिर हमारी इतनी धन दौलत है हर एक को, पर जितनी भी है उससे आसक्त हो जाता है। इवन पॉपर इज प्राउड ऑफ इज पेनी, अंग्रेजी में कहते हैं पॉपर, मतलब जिसके पास दमड़ी भी नहीं है, सब पॉपर इज प्राउड, ही इज प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ पेनी, इसके पास कुछ दमड़ी है, पेनी है, पेनी शायद इंग्लिश, इंग्लिश करेंसी पेनी, पाउंड सीलिंग पेंस, पेनी कहा गया फिर, पाउंड सीलिंग पेंस, पई, पई पई पेनी। तो श्रुत ऐश्व, जन्म ऐश्वर्य, फिर श्रुत पढ़ाई, इतना पढ़ा लिखा पढ़ा हूँ, कंप्यूटर जानता हूँ, ये या वो बात, तैरना जानते हो साइंटिस्ट एंड द बोटमैन, ये सीखा वो सीखा वो सीखा, तैरना सीखे हो? तैरना तो नहीं आता, फिर पलट की पलटी खाई उस बोट ने, तो 100% लाइफ फिनिश्ड। यहाँ की पढ़ाई ऐसी है, संसार की पढ़ाई तो और अबद्ध बना देती है, अनाड़ी रहना ही अच्छा है वैसे, जो अधिक पढ़ेंगे तो क्या, तो मतलब अधिक अटक जाता, अधिक फंस जाता, अधिक दूर जाता है जो भगवान। वो तो शास्त्र किया, वहाँ भी भ्रम है, लेकिन फिर वो ये शास्त्र भी नहीं है, तो उसको पढ़ेंगे पूरा प्योर मटेरियलिज्म, बनाना वो तो कुछ तो मायावाद या द्वैतवाद या बौद्ध मत या कोई सारे, वो भी भ्रम है, लेकिन सारे सांसारिक ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। फिर श्री सौंदर्य, तो मद, हर एक अपना सौंदर्य, कोई व्यक्ति अपने सौंदर्य से कोई प्रहलाद, हाउ डू यू फील, प्रहलाद का अपना रूप अच्छा लगता है, हर एक अपना रूप अच्छा लगता है समाओ, लेकिन है एक उधार का माल है सौंदर्य भी अपना नहीं है, दिया है प्रकृति ने, दिया है कुछ, आज है कल नहीं रहेगा। जैसे किराए के घर में तो मालिक कभी भी टेनेंट कह सकता है, टेनेंट अभी घर छोड़ दो, तो ये एक भक्त का श्रील प्रभुपाद को ही कहे, श्रील प्रभुपाद जब समझा रहे थे, और दिस बॉडी इज अ बैग ऑफ बोन्स एंड
flesh. When we put all these parts together, Prabhupada, body is so nice. सभी पार्ट साथ में है तो कि बहुत अच्छा लगता है. वैसे अच्छा लगने का कारण में से या हर एक अपना शरीर भी पसंद होने का कारण में से अपना आत्मा से जो प्रेम है, वी लाइक द सेल्फ. आत्मा इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि भगवान का आत्मा है. लेकिन दुर्दैव से देहात्म बुद्धि कुण पे इतनी धातु के इस देह को ये अपना सेल्फ समझते हैं. अगर आत्मा से प्रेम करेंगे, जिस आत्मा का, जो परमात्मा का आत्मा है, तो हो गया, फिर अच्छा है. उसमें सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है. अपने आत्मा का सौंदर्य और उस आत्मा का सौंदर्य का गर्व, जो आत्मा परमात्मा का आत्मा है, भगवान का आत्मा है, फिर उस सोच में कोई सुधार करने की आवश्यकता नहीं. उसमें कोई दोष नहीं है. और आत्मा सुंदर है भी, क्योंकि भगवान का पुत्र है आत्मा. तो माता पिता जो सुंदर होते हैं, तो उनके उनके बेटे बिटिया भी सुंदर देखी जाती है कि नहीं. पेरेंट्स आर ब्यूटीफुल, चिल्ड्रन आर ऑल्सो ब्यूटीफुल. तो कृष्णा माता पिता है, तो उनका जो अपत्य है, अंश जो है जीवात्मा, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, लाइक फादर लाइक सन. लेकिन ये आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी से फिर हो गया सब सत्यानाश. आत्मा जो सत्य है, शाश्वत है, सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम. तो उस ये जो मद है, ये अच्छा नहीं है. ये घमंड बढ़ाता है. ये चार बात है. त्वाम अकिंचन गोचरम, आप तो त्वाम अकिंचन, अकिंचन आप गोचर, गो मतलब क्या, या इंद्रिया, चर विचरण या परसेप्शन. तो इंद्रियों से या अकिंचन गोचर, तो उनके लिए जो अकिंचन है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, किंचित भी नहीं है, निष्किंचन जो है, निष्किंचन. तो किंचित शब्द से आ गए किंचन या किंचन. तो जैसे सुदामा थे, निष्किंचन थे, तो उनके लिए गोचर हो आप. आगे कहा, नमो अकिंचन वित्ताय, आपको नमस्कार. पुनः नमस्कार की बात कर रही है. आपको नमस्कार. किसको नमस्कार? जो अकिंचन वित्ताय, वित्त मतलब प्रॉपर्टी या संपत्ति, वित्त. तो अकिंचनों के आप संपत्ति हो. ये नहीं कि अकिंचन या निष्किंचन या पेनीलेस, ही हैज नथिंग. आई मीन ऑफ कोर्स इफ इज डिवोटेड, या इन दिस कॉन्टेक्स्ट, या जो संदर्भ दिया जा रहा है, उसकी संपत्ति आप हो. सारे संसार की संपत्ति तो, सारे संसार के सांसारिक लोगों की संपत्ति तो, जो भी है उनकी से संपत्ति है, धन दौलत, जिसको बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी, कार, दिस दैट. लेकिन जो अकिंचन है, उनकी संपत्ति आप बन जाते हो. ये नहीं कि उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनकी प्रॉपर्टी आप हो. जैसे श्रील प्रभुपाद, हम कहते हैं जब विदेश गए तो ही वॉज पेनी लेस और ओनली $5, 40 रुपये बचे थे. एंड नो फ्रेंड्स, हम कहते हैं नो फ्रेंड्स नो मनी. तो एक दृष्टि से ये भी सच है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि उनकी संपत्ति भगवान थे. स्वयं भगवान ही उनकी संपत्ति है, भगवान ही उनके मित्र थे. हम लोग नहीं कह सकते ही वॉज फ्रेंडलेस और मनीलेस. सबसे धनी तो वही थे, कि उनका धन भगवान, भगवान लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से विमानम. तो श्री प्रभुपाद, तो अर्जुन को तो मिले कृष्णा, और दुर्योधन को मिली सेना, नारायणी सेना, एक अक्षोहिणी डिवीजन. इतने सारे रथ, इतने सारे हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक इत्यादि.
तो एक तरफ ये सारा एक अक्षौहिणी डिवीजन सेना, दूसरी ओर कृष्ण, तो वो तो तुलना नहीं हो सकती। विजयस्तु पांडुपुत्राणाम ईशाम पक्षे जनार्दन, तो सेना एक पक्ष में सेना थी, एक पक्ष में जनार्दन थे, तो विजय तो पांडुपुत्रों का हुआ क्योंकि उनके पक्ष में जनार्दन थे, वो एक व्यक्ति थे, वही धन था, वही सब कुछ था जो सत्य है, त्रिकाल सत्य है। सत्यस्य सत्यम, सत्यस्य योनि जो है त्रिसत्य, सत्यस्य निहित है सत्य, सत्य निहित, तो वे जो सत्य है शाश्वत है वे उनके पास साथ थे, और क्या चाहिए फिर। आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पदये नमः, तो नमस्कार चल रहा है बारंबार कुंती महारानी का। वक्त्र निनीय भय भावनया स्थितस्य, जब दामोदर लीला हुई तो वह कुंती वहा होने की संभावना है, तो वो कहती है यहाँ पर कृताग सीधाम तावत, जब यशोदा छड़ी लेके आई तो आपके आँखों में आंसू थे, आंसू डबडबाए आपके आँखों में, और आप यशोदा की ओर देखना भी आपके लिए मुश्किल था, इतने डरे थे, छोटे बच्चे जब बड़ों की ओर देख भी नहीं पाते, तब ये कुंती महारानी कहती है, भीर अपि यद विभेति, भय भी जिसको जिससे भयभीत होता है, यमराज भय है और भी कोई भय कई है, तो जिसको डरता है, आपको भय भी डरता है, लेकिन उस समय तो मैंने देखा कि आप डर रहे थे, आपके मम्मी के छड़ी से आप इतने डरे थे कि आप कांप रहे थे और मम्मी की ओर देख भी नहीं रहे थे, आप सिर झुकाए थे, लटकाए थे और आँखों से आंसू टपक रहे थे, तो ये मुझे समझना थोड़ा कठिन है कि मैं द्विधा में पड़ी हूँ। आप यह भीर यश विभेति, भीरपि यद विभेति, सामाम विमोहयति, तो मैं तो मोहित हो रही हूँ, मैं तो आई एम बिविल्डर्ड, आप एक और तो ऐसे आपसे सभी डरते हैं। कपिल भगवान का है यद भयात वातो, तो आपके कारण ये सूर्य प्रकाश देता है, इंद्र वर्षा करते हैं, वायु देवता वायु को फैलाता है, आपके भय से ये सारे देवता दे आर ऑन ड्यूटी, जब बॉस होता है तो भय रहता है मालिक का, तो सभी काम करते रहते हैं, तो सारे आपके डर से अपनी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, ये देवता भी सूर्य भी चंद्र भी इंद्र भी डरे हैं आपसे, यद भयात आपके भय से, लेकिन उस समय तो आप डर रहे थे, आप भयभीत थे, तो ये जो ये बात मुझे बड़ी मोहित कर, सा माम मोहयति वक्त्रम निनीय, आप नीचे झुकाए थे। केचिदाहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, तो फिर अलग अलग 1, 2, 3, 4 कम से कम चार कारण बताती है इसी प्रार्थना में, चार श्लोक। आप क्यों प्रकट हुए, कोई कहता है कि इसलिए आप प्रकट, कोई कहता है कि ये आपके अवतार का उद्देश्य है, कोई कहता है इसके कारण आप प्रकट हुए, लेकिन आप प्रकट नहीं होते तो फिर हम आपकी कथा कैसी होती, अंत में कह रही है आपकी कथा हो जाए। आप प्रकट नहीं होते तो फिर आपकी लीला भी नहीं होती, फिर वो कथा भी उसकी नहीं होती, तो कथा हो जाए, उसको आपने टॉपिक दे दिया, आप नहीं आते, आप वही रहते तो संसार को कैसे पता चलता आप हो, फिर आप आए, फिर आपने लीला की, अपने गीता को उपदेश सुनाया, फिर माखन चोरी हुई, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, ये जो श्रवण स्मरणा रानी करिष्यनीति केचन भारावतार भारावतारणाय अन्य, तो अलग अलग आप अपने वंश का नाम बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए आप यदुवंशज। एक मलय चंदन होता है, मलय चंदन, कहाँ का चंदन? मलय मतलब कौन सा देश?
मलेशिया।
मलय चंदन मतलब मलय वहाँ है ना, वहाँ है मलेशिया, मलय वहाँ है ना गिरी मलय। तो चंदन, चंदन ने उस मलयगिरी को प्रसिद्ध किया, ये मुख्य बात है। और चंदन नहीं होता तो उस गिरी को कौन पूछता, गिरी का पता भी नहीं चलता। और चंदन हो गया, चंदन के वृक्ष हो गए, उसका सुगंध कहाँ से आ रहा है? वो मलयगिरी से आ रहा है। तो कुंती महारानी कह रही कि आप यदुवंशी बने इसीलिए ताकि यदुवंश का नाम हो, गौरव हो। आप उसमें प्रकट नहीं होते तो उस कौन पूछता उस वंश को, वंश वंश वंशावली को। तो वही एक यदो प्रियश अन्ववाये मलयस्येव चंदनम क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम अपरे। तो अलग अलग कारण दिए हैं। और जब कुंती महारानी कही कि आपने ये भागवत कथा का टॉपिक आप नहीं बनते अगर आप प्रकट ही नहीं होते, तो अच्छा हुआ कि आप प्रकट होते हो, प्रकट हुए हो, ताकि श्रृण्वन्ती गायन्ती गृणन्ती अभीक्ष्णशः ये सब चलता रहे, स्मरन्ती नन्दन्ती तवे हितं जनः ते एव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजं। तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति और सतत सब समय स्मरन्ति नन्दन्ति, नन्दन्ति मतलब आनंदित होना, और श्रवण कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं, इस बात को देख के आनंदित होना, स्वयं भी आनंदित और औरों को आनंदित देख के स्वयं आनंदित होना। नंदन्ति स्मरन्ति नंदन्ति, और ऐसे जो करते हैं ते एव पश्यन्ति वे ही देखेंगे, अचिरेण तुरंत देखेंगे, जल्द ही देखेंगे। किसको देखेंगे? पदाम्बुजम तावकम पर आपके चरण कमलों को देखेंगे। और जब देखेंगे तो क्या होगा? फिर भव प्रवाहो परमम, भव प्रवाह समाप्त होगा उनके लिए, भव प्रवाह समाप्त नहीं होता। ऐसा ये संसार का वैशिष्ट है कि इसका प्रवाह कभी, कोई जन्म लेता है, कोई मरता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है संसार में, जो भी संसार चलता ही रहता है, आगे बढ़ता ही रहता है, कोई किसी की राह नहीं देखता, कुछ नहीं होता, चलता रहता है। आई थिंक 15 चैप्टर भगवद गीता आई, प्रवाह की बात आई, तो वह श्रीधर स्वामी महाराज टीकाकार वह समझाते हैं। ये संसार वैसे अशाश्वत कहते हैं, इज अ टेम्पररी, लेकिन इसकी धारा तो भव प्रवाह तो अखंड चलता रहता है। फिर जन्म की या मरण की या और भी सारी जो प्रक्रिया है चलती रहती। एक बार ये सारा मोशन में सेट किया, पुश बटन किया भगवान ने, सारा प्रोग्रामिंग किया सृष्टि से लेकर प्रलय के समय तक, वो चलता रहता। सतयुग आ गया, त्रेता युग आ गया, द्वापर कली युग आ गया, वंस अगेन, एक चक्र हो गया, दो हो गए, 1000 हो गए, फिर ब्रह्मा को आती है नींद, फिर और 1000 महायुग, फिर जग जाते हैं तो एक हो गया रात और दिन, फिर अनदर वन वीक, एक महीना, एक साल, ऐसे 100 साल, इट दिस इज नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड चलता रहता है। तो भव प्रवाह, तो उपरमम, तो उस व्यक्ति के लिए भव प्रवाह समाप्त होता है जो ये सब करते हैं, श्रणवंती, गायंती, प्रणंती, साध के अभिक्षणशः, यह है प्रणंती, साधवा भी है दूसरे श्लोक में। तो हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, यही तो कर रहे हैं, श्रणवंती, गायंती, हमारा सारा हरे कृष्ण मूवमेंट क्या है, इस यही तो आधार है। कुंती महारानी ने जो कहा यहाँ, श्रणवंती, गायंती, गृणंती, अभिक्षणशः, स्मरंती, नंदंती, यही तो सारा हरे कृष्ण मूवमेंट। तो जो भी इसका उसके सदस्य बनेंगे, इसका पार्ट बनेंगे, उनके लिए भव प्रवाहो परमम। स्नेह पाश इमं छिंदि दृढ़ पांडुषि वृष्णिषु, तो मेरे स्नेह के पाश, स्नेह पाश उसके टुकड़े हो जाए, पांडु, पांडवों में वृष्णि ये परिवार है, वंश है, उनके सब सदस्य है, उनके साथ का मेरा जो संबंध है छिन्न भिन्न हो, तो भगवान शाह मैं भी तो उसी वृष्णिश वृष्णि वंश का मैं भी तो हूँ, ऐसा भगवान सोचे होंगे। तो फिर कुंती महाराज, नहीं नहीं, आप इंक्लूडेड नहीं है, मैं जब मेरी मेरा संबंध वृष्णि वंश से भी समाप्त हो, छिंदी हो, तो मई त्वई में अनन्य विषया मतीर मधुपते असकृत, आप में, नहीं नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, मैं आप में मेरी रति बनी रहे। और कैसी, गंगे ओघम उदनवती, जैसा गंगा का ओघ, गंगा की धारा सदैव समुद्र की ओर दौड़ती रहती है, तो मेरा मन भी आपकी ओर अविरल, अविरल नॉट अविरल, अविरत, अविरत चलता रहे। फिर किसी ने कहा कि शायद कुंती ने कभी नहीं सोचा होगा कि गंगा नदी में भी कई सारे डैम्स वगैरह लोग बनाएंगे कलयुग में बांध, तो फिर गंगा का जल लोग नीचे बहने ही नहीं देते, आगे बढ़ने ही नहीं देते, सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पेट पूजा के लिए सारा पानी खेतों में पहुंचा रहे, पंडरपुर में कभी आचमन के लिए पानी कभी 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 नहीं होता। तो कैसी गहे बहेगी है भीमानी चंद्रभागा, तो जा चरणी जा गंगा, गंगे गंगे ओघम उदनवती। और फिर अंत में और एक बार नमस्कार करती है, श्री कृष्ण कृष्ण सख, कृष्ण सख अर्जुन होंगे, हे कृष्ण और कृष्ण सख अर्जुन के प्यारे सखा, हे गोविंद गोद्विज सुर अर्ति हरावतार, प्रार्थना में कह रहे गो गाय, द्विज ब्राह्मण, सुर सुर, अर्ति हर, अर्ति मतलब दुख, अर्थो अर्थार्थी, अर्ति हरने वाले, हर सुरार्थी, हर अवतार, ऐसे अवतार जो सुरों के दुख को हरने वाले, आप सुरों के, फिर गाय ब्राह्मण और सुर के, अर्ति हर अवतार, योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते। मंद जहास वैकुंठो, तो ये मधुर शब्दों में की हुई प्रार्थना जिसमें लीला, कई लीलाओं का भी उल्लेख हुआ, तो ये जब सुने भगवान तो मंदम जिहास वैकुंठ, वैकुंठ मतलब भगवान,
भगवान मंद मंद हास मुस्कुराए। ओके तो पार प्राचीन है। ये तो ये सारा भगवान सर्व कारण कारणम इसी से तो वृंदावन के कुंती को ही नहीं वृंदावन के सभी को तो पता चलता ही था ना। सारे ब्रजवासी तो जानते ही थे कौन सा वध आया और वो राक्षस आया उसका वध किया, लेकिन भगवान ने उनका जो वात्सल्य भाव है वात्सल्य भाव को ऐसा बनाए रखा है, उस वात्सल्य भाव से ऐसा प्रभावित किया है भगवान उसको, उनको न तो हिलने न तो डुलने दे रहे हैं। नंद बाबा भी प्रार्थना कर सकते थे लेकिन उनका जो वात्सल्य भाव का वात्सल्य रस का जो प्रभाव है, प्रभाव जब तक बना रहेगा तो यशोदा मैया ने भी देखा था ना, वो ब्रह्मांड को देखा तो उसके लिए क्या है क्या देख स्वप्न में हूँ क्या हो क्या हो क्या रहा है मुझे, उसको तो चक्कर आई बेहोश हुई, लेकिन जब होश में आई तो पुनः लाला लाला उसी को गोद में लेके पुनः स्तनपान कराती है उसी लाला को। जब यमल अर्जुन वृक्षों को उखाड़े भगवान ही गिराए थे तो जब बुजुर्ग आए नंद बाबा आए उपानंद आए सभी आए सारा सीबीआई का सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था किसने किया क्या हुआ, तो कृष्ण के कुछ मित्रों ने देखा था कि कृष्ण ही ने तो गिराए पेड़, तो बच्चे साक्षी थे आई विटनेस थे तो साक्षी देने के लिए साक्षी दे रहे हैं, नहीं हमने देखा इसने तो उखाड़ इसने गिराया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। ए चलो मिठाई खाओ ये मिठाई लड्डू खाओ सो जाओ उनको क्या समझ में आता है, तो उनका जो वात्सल्य भाव इतना प्रगाढ़ इतना प्रभाव और कुछ सोच ही नहीं सकते। कोई नंद बाबा को जब चोरी करके ले गए वरुण के सर्वेंट्स वरुण लोक में, तो कृष्ण बलराम भी पीछे से आए तो कृष्ण बलराम का तो स्वागत हो रहा था, आरती उतारी जा रही थी वरुण देव द्वारा, लेकिन नंद बाबा उस वक्त उनको तो अरेस्ट करके रखा था, ऐसे समय पर स्नान थोड़े ही करना होता है, उन्होंने गलत समय पर स्नान किया था द्वादशी के दिन जमुना में, ये कारण बताया आपने गलत समय स्नान किया इसलिए आपको वारंट मिला है हमें आपको अरेस्ट करने का, हम आपको ले जा रहे, तो नंद बाबा का तो बांध दिया था। तो कृष्ण बलराम जब आए तो उनकी जय हो नंद बाबा ने सॉरी ये मेरे पुत्र है मेरे पुत्रों की जय हो और बाबा का क्या बाबा का तुमने अरेस्ट कर दिया। तो कुछ विचार तो आया, सचमुच ये है कौन, ये कौन है ये कृष्ण बोल रहा। या जब कृष्ण भी 7 दिन उठाए थे गोवर्धन, तो गोवर्धन लीला के बाद सब इष्ट गोष्ठी हुई थी, वहाँ भी प्रश्न उठा था, क्या ये कौन, ये कोई देवता है कौन, हुई इस कृष्ण। तो नंद बाबा को जो भी गर्गाचार्य बताए थे वो बातें तो शेयर की नंद बाबा ने, ऐसा है वैसा, नारायण समगुना इत्यादि इत्यादि। तो वह स्थिति कुंती महारानी की भी है। इस समय भगवान ने थोड़ा रिवील किया, वो जो भाव है वत्सल्य भाव ही है, कुंती महारानी का भाव भी अपने भाई का ही पुत्र है, तो अपने खुद के पुत्र जैसा, जैसे नकुल, नॉट नकुल, एटलीस्ट 3 युधिष्ठिर, भीम और नकुल, नॉट नकुल, अर्जुन जैसे पुत्र है, तो कृष्ण भी उनके लिए अपना पुत्र जैसा ही है, तो वात्सल्य भाव है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने अंदर से कुछ थोड़ा एडजस्टमेंट किया, कुछ दूसरा ऐश्वर्य दिखा रहे हैं अलग, या वात्सल्य भाव का जो प्रभाव है उसको थोड़ा घटाए हैं। तो उसी के साथ ये सारा, जैसे वैकुंठ में होता है, वैकुंठ में सब सदैव चलता रहता है, जय जगदीश हरे, और उनकी आराधना, उनकी प्रार्थना, उनकी पूजा। तो वृंदावन में ये नहीं होता, या फिर वृंदावन का ही थोड़ा एक्सटेंशन, हस्तिनापुर में भी वही भाव चल रहा है, उनके परिवार के सदस्य है कुंती महारानी। लेकिन वृंदावन से मथुरा जब भगवान गए तो वहाँ तुरंत आरती उतारने लगे, वो चित्र भी है ना, बीबीटी का पेंटिंग भी दिखाया, कृष्ण बलराम मथुरा नगरी का दर्शन कर रहे थे तो उनकी आरती होने लगी, और फिर द्वारका में तो आरती ही आरती, राजा रणछोड़ राय की जय। तो ये सब तो कृष्ण के हाथ में चाबी है, कृष्ण के हाथ में, तो उनका जो वात्सल्य भाव के स्थान पर दास्य भाव का हो, या भगवान का, या वृंदावन की जो लीलाएं हैं उसमें ऐश्वर्य का ज्ञान नहीं है, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान उस, या इन भावों में भी, स्थान भी, लीला स्थली भी और भाव भी, माधुर्य लीला में माधुर्य लीला, फिर सख्य लीला और वात्सल्य, या वात्सल्य इसमें प्रधान कम है, ये ईश्वर भाव, ईश्वर भगवान ईश्वर या कृष्ण ईश्वर, वो जो ज्ञान है उससे रहित है। तो इसलिए पहली बार उसने कहते ही शुरुआत की, आप ईश्वर हो बस। तो थोड़े समय के लिए, प्रार्थना के समय के लिए, फिर बैक टू नॉर्मल, फिर पहले जैसा का संबंध, ये नहीं कि उस समय से फिर ऐसा ही सोचती रही सब समय, पुनः भगवान ने उसको ढक लिया, उस भाव को, वात्सल्य भाव को, तो लगता और कोई। Yeah, originally she was in Mathura, Vrindavan. Yeah, she is a sister of Vasudev.
Yeah, yeah.
Then. Then Kunti Bhoj. There was a king, Kunti Bhoj. उनके पास वो रहती थी, पता नहीं क्या कारण से वहाँ तो कुंती भोज के यहाँ रहती थी। अब कुंती भोज ने उसको संभाला तो उसका नाम कुंती हुआ। कुंती महारानी का नाम कुंती होने का कारण कुंती भोज राजा के राज्य में रही, या कुंती भोज राजा ने उसको संभाला। तो बचपन में तो यह मथुरा की है, उसका जन्म तो मथुरा का है, कुंती का वसुदेव की बहन है।
कम से कम 110-115 साल की डिफरेंस है, यह तो शायद हो सकती
है। कृष्णा जब कुरुक्षेत्र में थे क्या 100 साल तो द्वारका की सारी लीला कुंडीनपुर में पता थी। कुंडीनपुर कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी ने कैसे, रुक्मिणी को पता था सब कृष्ण का लीला का गुण का रूप का। उसका प्रचार करने वाले इतने कई सारे परिव्राजकाचार्य नारद मुनि इंक्लूडेड, तो वो जाते देखते सुनते और वहाँ से जाके दूसरे स्थान पर उसका प्रचार करते हैं। जैसे कावर्ड बॉयज जो भी लीला देखते दिन में कृष्ण के साथ, और सायंकाल को जब घर लौटते तो आकाशवाणी मतलब हर बच्चा शाम को टॉक ऑफ द टाउन सारे विलेजेस में हर हर गांव के घर घर के बच्चे तो कृष्ण के साथ गाय चराने आते। तो शाम को न्यूज़ सर्वत्र उस दिन की जो जो लीला है। इसलिए राजा परीक्षित ने पूछा कि ये जो कौन सा असुर अघासुर के वध की लीला एक साल के बाद कैसे लोगों को पता चली, एक साल भर कैसे पता नहीं चला, ऐसा प्रश्न पूछे। क्योंकि एक साल भर बच्चे थे नहीं, आज की ताजी खबर उस दिन की ताजी खबर तो हर शाम को पहुंचाते थे वो बालक, लेकिन वो बालक ब्रह्मा ने जब चोरी किए तो समाचार नहीं पहुंच रहा था। तो दोबारा जब एक साल के बाद उन मित्रों को लौटा दिए तो उस दिन में जो लीला हुई थी, जो एक साल के बाद वैसे मित्र लौट रहे थे तो उन्होंने वैसी लीला कही मानो आज ही हुई थी एक साल पहले, लेकिन उन्होंने उस दिन शाम को कही तो सबको पता चला। तो एक साल के लिए किसी को पता नहीं था। राजा परीक्षित पूछे ये क्या उसका रहस्य बताइए, साल भर किसी को कैसे पता नहीं चला। तो उस समय के समाचार या कम्युनिकेशन के, आज तो हमारे पास SMS आ गया और लैपटॉप आ गए और क्या क्या, लेकिन उन दिनों में तो डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी एक्टिव थी। उस समय भी कुछ कम नहीं था इंफॉर्मेशन, लेकिन उसके तरीके अलग थे उसको फैलाने के। कृष्ण चुप रहे जब पा रहे, नहीं तो फिर राजा परीक्षित कैसे पूछते प्रश्न। मैं तो मथुरा में था, वो सभी को भेजता था। वो उसको ये समझ में नहीं आ रहा था होता क्या, स्वाहा स्वाहा होता था उसका, वन वे ट्रैफिक, सभी जाते थे कोई लौटता तो था नहीं। आई मीन इस प्रकार काफी टाइट कंट्रोल है भगवान का हर बात पर। वहां की समा वहां का बलराम को पता नहीं था, बलराम को जो पता नहीं था मोहयंती यद सूर्या, तो मतलब ये कितना किसको कब, ये तो है सर्वश चाहम हृदय सन्निविष्टा मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। इस प्रकार इस माध्यम से भगवान की अध्यक्षता में सारा संसार, फिर पत्ता भी नहीं हिलता जो हम कहते हैं, ये समझा जा सकता है कृष्ण के बिना। तो कितना किसको क्या प्रकाशित करना है, कौन सी बात किससे छिपा के रखनी है, ये अनायास ही भगवान की इच्छा से उनके शक्ति या जो है वो करती है सारा कार्य। तो ये जो बालक थे भगवान, ठीक बालक मित्र बने थे, संबंध बहुत अच्छी बात हमारे आचार्य ने कही है। शुरुआत में तो बालक थे, लेकिन हर दिन ब दिन वो कृष्ण बन रहे थे। तो पहले दिन तो बालक थे, दूसरे दिन बालक और थोड़ा सा भगवान बन गए, ऐसा अनुभव वो माताएं अपनी मदर्स कर रही थी। तो ऐसा एक समय आया वृंदावन में उस साल को पूरा होते होते कि उनके मन में जो विचार कि ये मेरा पुत्र है और ये पड़ोसी गोपी का पुत्र है, ये उसका पुत्र है, उसका पुत्र है, ऐसा इसकी सोच बंद हो गई, क्योंकि सभी एक ही थे। धीरे धीरे भगवान अपनी भगवत्ता को बढ़ा रहे थे, इसलिए भी कि सारी माताएं चाहती थी भगवान हमारा पुत्र, भगवान जैसा पुत्र, तो भगवान जैसा तो भगवान ही है। तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने ये लीला खेली है। तो वो केवल अपने उनके पुत्र जैसे वे दिखाई ही नहीं देते बच्चे, और साक्षात भगवान बन रहे थे और सबको समझ रहे। तो फिर बछड़े भी भगवान बने थे, तो गाय चाहती थी उनको पाप या बछड़े कृष्णा, हमारे थनों को क्यों कब आके वही दूध पिएगा, तो कृष्ण बन गए वैसे। और सारी युवतियाँ भी चाहती थी कि पति के रूप में हमें प्राप्त हो कृष्णा। तो उस वक्त अनाउंसमेंट भी होती है, मुहूर्त अच्छा है विवाह के लिए, मुहूर्त अच्छा है। तो सब जगह तो कई सारे विवाह हो गए, तो सारे युवतियों को, युवा गोपियों को कृष्ण मिले पति के रूप में, बुजुर्ग गोपियाँ उनको पुत्र के रूप में मिले, सारे बछड़ों के लिए, गायों के लिए बछड़े के रूप में मिले। राधा रानी का तो अभिमन्यु के साथ हुआ, वो तो बाद में जब छोटे ही थे ना, संभावना है राधा रानी का विवाह भी कृष्ण से हुआ है ना, इसलिए वो बाद की बात है, वो दूसरी बात है। तो 100 साल के बाद फिर नेक्स्ट डे जब 100 साल जब पूरे हुए, तब तो वही मित्र, ओरिजिनल मित्र लौटे। बड़ा ऐसा कोई कर सकता है।